इसके बाद आप देखिए कि अगली नेकी जो बहुत ही खूबसूरत है वो है कुर्बानी। रमज़ान के साथ साथ जैसे रोज़े की बात आती है तो ज़िलहज के साथ ईद और कुर्बानी है। थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे एक अहम बात है जो आपकी तवज्जो चाहती है। अभी से लेकर ज़िलहज का चांद दिखने तक आप नाखून भी काट सकते हैं, बाल भी काट सकते हैं, लेकिन रिवायात में आता है कि जब चांद दिख जाए उसके बाद फिर नाखून और बाल ना काटें, और 10 ज़िलहज को कुर्बानी करने के बाद काटें। तो एक तो जो कर रहा है कुर्बानी उसके लिए तो ये है ही वाजिब, लेकिन जो नहीं कर पाता किसी वजह से, गरीब है, मिस्कीन है, तो अल्लाह ताला उसको फिर इसका अजर देगा। नाखून काटेगा तो बकरा काटने का अजर मिलेगा, बाल काटेगा। अब इसके लिए जो आम तौर पे मुश्किल लगता है औरतों को, वो फेस की वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, हाय हम क्या करें, तो ईद की नमाज तक सब्र कर लें। ईद के दिन अभी पहले से सारी चीज़ों से फारिग हो जाएं, अपने फालतू बाल साफ कर सकते हैं आप लोग, अपने जो भी काम करने हैं। लेकिन इन 10 दिनों में वैसे भी कौन सी इतनी ज़रूरत पड़ती है, हर वक्त तो हर एक काम नहीं होता, तो ख़ास तौर पे चांद देखने से पहले आप इन चीज़ों से फारिग हो जाएं, फिर 10 दिन बिल्कुल ना करें, और फिर ईद की नमाज के बाद, कुर्बानी करने के बाद फिर आप लोग ये कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप देखें कि ईद के दिन की सुन्नतों पे अमल करें। ईद के दिन की सुन्नतें बहुत सारी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जो चीज़ें मिलती हैं। मसलन आप देखिए ईद के दिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कि गुसल करना, खुशबू लगाना, बेहतरीन लिबास पहनना, ये नेकी है। अब चूंकि हम हर रोज़ ही पहनते हैं, हमारे लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उस दिन करें तो सुन्नत समझ के करें। फिर इसी तरह आप देखिए कि ईद के दिन तकबीरात पढ़ना है, घर से निकलते हुए भी बच्चों के साथ तकबीरात पढ़ें, बाद में आते हैं तक रस्तों में भी होगी। फिर इस ईद की नमाज से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए, यानी रोज़ा एक छोटा सा होता है, ये 10वें दिन के रोज़े का अजर आपको वैसे ही मिल जाएगा, सिर्फ थोड़ी देर। वैसे ही लोग नाश्ता नहीं करते, कुछ भी ना खाएं, और कोशिश करें कि कुर्बानी के गोश्त से अगर आप खा सकें। फिर इसलिए इसके बाद दूसरा अमल क्या है कि नमाज ईद के लिए जाना। अब आप कहेंगे कि अच्छा हम तो जाते नहीं हैं, तो औरतों और बच्चों को भी ईदगाह जाना है। हदीस में आता है कि वो औरत जिसको नमाज नहीं पढ़नी वो भी जाए, और वो पीछे बैठे और दुआ में शामिल हो। जिस औरत के पास कहाँ ओढ़नी ना हो, कहाँ, वो अपनी हमसाई की ओढ़नी में छुप के चली जाए। ये भी देखे वक्त था उस वक़्त में कि औरतों के पास चादर तक नहीं होती थी, तो नमाजों के लिए जाना चाहिए। घर में पता ही नहीं चलता अगर ईद की नमाज़ पे सुबह ना जाए। आज भी कभी किसी फ्लाइट पे जाने की वजह से या किसी वजह से अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के कपड़े बदलना, तैयार होना पड़े, तो जहन में वही बचपन की यादें आ जाती है कि अच्छा आज ईद है, सुबह ईद के दिन सब नहा रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, और सोते बच्चों को उठा के माँ बाप ईदगाहों में ले जाएं। ये रिचुअल्स हैं। देखिए हमारे बच्चों ने अगर ये सब ना देखा तो कुछ नस्लों तक तो फिर वही होगा कि ईद का कुर्बानी भी सदका कर दो, हॉस्पिटल बना दो। आज ये बातें हो रही हैं। क्रिसमस का हमारे बच्चों को ज़्यादा पता है, वैलेंटाइन डे का ज़्यादा पता है, और अपनी नमाजें, ईदें बोर होती जा रही हैं और इनके फंक्शन अच्छे होते जा रहे हैं। तो ये जुल्म करते हैं माँ बाप अपने बच्चों पर। पूरा एहतमाम करें, बच्चों को ईद के कपड़े लेकर दें, और ईद से कुछ अर्सा पहले फिर नई चीज़ें ना दें, ताकि ईद के दिन की चीज़ की खुशी भी हो। फिर इसी तरह जब वहाँ पहुँच जाएँ तो अजान और तकबीर के बग़ैर ईद की नमाज़ पढ़ना। फिर नमाज के बाद छोटा सा खुतबा होता है, वो बहुत लाजमी है, उसको सुनना होता है। जुमे की नमाज और ईद की नमाज में यही फ़र्क है, जुमे में खुतबा पहले और नमाज बाद में, जबकि ईद में इसका अपोजिट होता है। फिर इसके बाद जो इस्तेतात है उसके लिए कुर्बानी करें। अब कुर्बानी पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, क्या फ़र्ज़ है, अच्छा उस पर तो कर्ज़ है, उस पर ये है वो है, तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अलग से दर्स मौजूद हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आजकल वेबसाइट पे भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नाम पे पेज डाला हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि कुर्बानी के यानी इस दिनों के करने के काम और बहुत सारे मौजूद हैं। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये nurulquran.com मैंने खोला, इसकी आपको बाद में वेबसाइट दे देंगे, अगर आप चाहें CDs पे लिखी हुई है। तो मेन पेज पे ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज का एक पेज डला हुआ है, इसमें आप देखेंगे ये ऑडियोज़ हैं, उमरा ट्रिप जर्नी ऑफ नॉलेज है। फिर इसी तरह ये मैंने पिछले साल एक उमरा किया उसकी शेयरिंग डाली हुई है। फिर ये हज़रत इब्राहिम पे कुछ लेक्चर्स हैं हज के लिए, हज को हज पे जा रहा है तो उनको रेकमेंड करते हैं, ये बरकत वाले दिन एक लेक्चर है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये पूरी देखिए हज किताब, हज के बारे में एक पूरी बुक, एक एक मसला है, ये कुछ रीडिंग मटीरियल है। तो इस तरह की चीज़ों से आप लोग ख़ुद भी फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि एक और चीज़ जो ईद के दिन है कि उसके गोश्त को फिर तकसीम करें, सारा खुद भी नहीं खाना और सारा दूसरों को भी नहीं देना। अमूमी तौर पर उसके 3 हिस्से किए जाते हैं, खुद भी खाएं, रिश्तेदारों को भी दें और ज़रूरतमंदों को भी दें। और आपस में जब ईद के दिन मिलें तो क्या करें, ईद के दिन तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम, ये सुनन अल कुबरा व हकी की रिवायत है 6390 नंबर की, कि ईद के दिन जब मिलो तो तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम कहें। کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی اور ہم سے بھی یہ عبادت قبول کرے. پھر عید کے دن کی سنتوں میں ایک سنت کیا ہے کہ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جائیں تو دوسرے سے واپس آئیں. کیوں بھلا؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے آپ لوگ مل سکیں. پھر اس طرح عید کے دن میں ہلکے پھلکے کھیل اور کوئی اشعار کے ذریعے سے خوشی بھی منائی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہونے سے منع نہیں کرتا, اصل یہ ہے کہ ہم اس خوشی میں اللہ کی حدوں کو قربان نہ کر دیں. رہ گئی قربانی, تو آپ دیکھیے کہ ذلحج کی آخری مگر اہم ترین عبادت جو ہے وہ قربانی ہے. قربانی کا لفظ قرب سے نکلا, قریب, اللہ کا قرب پانا. قربانی ہر وہ عمل ہے جس سے اللہ کی رضا اور اس کا قرب لیا جائے. 10 ذلحج سے لے کر 13 ذلحج تک کیا جا سکتا ہے. 10, 11, 12, 13, ٹھیک ہے. بعض تو اس میں تھوڑی بہت آگے اور بھی رخصت دیتے ہیں. کرنا کیوں ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو سچا کرنے کے لیے. ریاکاری سے پاک ہونی چاہیے قربانی. لوگوں کو ذکر نہ کیا کریں ہم نے اتنے بکرے کیے, اتنی قربانیاں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصلی لربک وانہر, سورۃ کوثر کی آیت نمبر 2 میں, کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. اور سورۃ الانعام 162 میں قل ان الصلاۃ والنسکی, تو یہ جو لفظ نسک ہے نا یہ خون بہانے کو کہتے ہیں. تو گویا کہ پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ تقویٰ حاصل ہو جائے. اللہ کی رضا ہے لیکن قربانی تقویٰ کے لیے. ایک بکرے کو ذبح ہوتے دے کر سوچیں کہ یہ تو جان کٹا رہا ہے, میں نے تو پتہ نہیں اپنی آرزویں بھی نہیں دی اللہ کو, میں اللہ کے لیے کیا قربان کر سکتی ہوں. اور اصل یہ ہو کہ فخر نہ ہو, سنت ابراہیمی کو جگانا ہو, لَيَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, کہ اللہ کو نہ تو جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون, اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو اس سے قرب حاصل کرے. مسلمان بے سوچے سمجھے نیکیاں نہیں کرتا, بلکہ اس کے اندر اس کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. گھر سے ایک بھی قربانی ہو سکتی ہے, ایک پورے گھر والوں کی طرف سے. شوہر الگ کرتا ہے, بیوی الگ کرتی ہے, بچوں کی طرف سے کرتے ہیں, نو پرابلم, اٹس جسٹ لائک اے گفٹ. کبھی آپ ایک ہی گفٹ سارے گھر والوں کی طرف سے دے دیتے ہیں, کبھی میاں بیوی الگ دیتے ہیں, کبھی بچے بھی دیتے ہیں. جتنا اللہ سے تعلق زیادہ اتنا ہوگا. فرض نہیں ہے, کسی پہ بھی فرض نہیں ہے. اس لیے وہ سارے سوال جو اس کے بعد ذہنوں میں اٹھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی خوشی آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں, لیکن دیں گے تو انشاءاللہ اس سے قرب ہوگا. ایک چھوٹی سی بات ضرور کیا کریں کہ بچوں کے سامنے قربانیاں کریں. جیسے ہم ویسے کہتے ہیں تو عموماً ہم باہر رہنے لے پیسے باہر ملکوں میں بھیجتے ہیں, پھر عید والے دن پھر ہم چکن ہی پکا رہے ہوتے ہیں اور وہی گوشت جو پہلے سے لیا ہوتا ہے. حالانکہ آپ سب کو بھی یاد ہوگا ہمارے لاشور میں جو عید کے دن کے تازے گوشت کے کھانے اور اس کا ٹیسٹ اور سارے گھر میں گوشت اور مانگنے والوں کا ہجوم اور مکھیاں, آج بھی اس سے کچھ فیلنگ آتی ہیں؟ ہمارے بچوں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں. اگلے 4 وقتوں میں کیا ہوگا جی؟ باربیکیوز ہوتے, پارٹیاں ہوتی, سیخ کباب بنتے. آج بھی ان چیزوں سے سوچ کے مزہ آتا ہے. پھر تبھی تو آج ہمارے بچے یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اسلام بورنگ ہے, نو فن, کیونکہ پھر ہم اٹھاتے ہیں ان کو پھر ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں عجیب و غریب چیزیں وہ دیکھتے اور سنتے ہیں. تو کوشش کرنا چاہیے کہ انسان ان سارے کاموں کو اچھے طریقے سے کرے. تو بہرحال تھکے ہوں گے آپ لوگ بھی. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیکیوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کی خوشیاں بھی عبادت والی ہیں, یعنی ایون عید کا دن ہے یا ذلحج ہے یا اس سارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہ سب کچھ رکھا ہے. اب یہ ساری نیکیاں ڈسکس کی تو ایک آخری چیز رہ جاتی ہے, کچھ رینڈم چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آتی. مثلاً نمبر 1, وقت کا صحیح استعمال. میں نے اس 10 دنوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. دوسری بات ہے نیکی کا موقع ضائع نہیں ہونے دینا. بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا ہے. لمبی فون ٹاکس نہیں کرنی. وہ کھانا نہیں بنانا جس میں بہت ہی ٹائم لگ جائے. وہ کپڑے نہیں پہننے جس کو سجانے اور سنوارنے اور استری میں اتنا ٹائم لگ جائے. پھر گناہوں سے بچنا ہے. ان دنوں میں اگر آپ کوئی فلمیں دیکھتے تھے تو وہ چھوڑ دیجئے. کوئی اس طرح کی ٹائم ویسٹرز ہیں آپ کے تو ان کو نکالیں. پھر آپ اچھی کوئی کتاب شروع کریں کہ میں نے ان 10 دنوں میں ایک بک پڑھنی ہے. کوئی اچھی بک سیریز لیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. یعنی جتنی کوشش کریں گے نیکی کی, آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا آپ سے کام لے گا. جتنا زیادہ آپ کریں گے اللہ کی ذات آپ سے اتنا ہی کرائے گی. آپ کچھ سوال اگر آپ کے ذہنوں میں اس بارے میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی بات, کوئی جو چیز آپ سوچتے ہیں تو موسٹ ویلکم. کیا سیکھا؟ بس ایک ایک جملے میں ریکیپ کرتے جائیں تو پھر انشاءاللہ ہم یہاں پہ دعا کریں گے. جی آپ نے کیا سیکھا ادھر سے؟
سارے اس مرتبہ باقی چیک لسٹ مل گئی ہے. ہمیشہ کچھ نہ کچھ ٹائم آپ کے پیچھے ہو جاتا تھا, ذلت شروع ہو جاتی تھی, مس آؤٹ ہو جاتا تھا.
ابھی سے اپنے کیلنڈر پہ مارک کر لیں کہ اس دن کے بعد میں نے بال نہیں کاٹنے, ناخن نہیں کاٹنے. تو اس سے کتنا آرگنائزڈ آپ کا کام ہوگا. وہی سارے کام جو عید کی رات کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ آج ہی کر لیں, یعنی آج سے رات کے اس سے پہلے کر لیں. اور عید کا جوڑا بھی اگر بنانا ہے تو پہلے ہی بنا کے رکھ لیں تاکہ ان 10 دنوں میں درزیوں کے پیچھے نہ بھاگتے پھریں. जी आपने क्या सीखा रहा?
रिमाइंडर था दादा जी, एक टाइम के ऊपर चीज़ें ध्यान से निकल जाती हैं तो रिफ्रेश हो गई सर,
रिफ्रेश हो गई चीज़ें, क्योंकि
ऑर्गेनाइज
जी
ऑर्गेनाइज
बिल्कुल
ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है
बिल्कुल।
पानी का मैं पूछना चाह रही थी कि ज़्यादातर ऐसी चीज़ सेट के हम लोग पानी नहीं देते
यहाँ से, बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ कुर्बानियाँ होती हैं जी। मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ कि आप अगर बकरे दो तीन करते हैं तो दो वहाँ भेज दें, पैसे कहीं भी भेज दें, या आपको पता है लोगों की तरफ से अपील आती हैं इस मुल्क में उस मुल्क में, एक बकरा इधर भी कर लें। और उसका तरीका ये कि यहाँ बुचर शॉप्स होती हैं और वो लोग अमेरिका में, हम खुद मैं जब भी रही हूँ जब से हम ईद की नमाज के फौरन बाद जाते थे, करते वो लोग इस तरह से हैं कि कुछ खास जगह अलॉटेड है वहाँ, थोड़ा कहीं दूर भी हैं कहीं करीब हैं, तो रेगुलर जो बुचर शॉप्स हैं इन्होंने पहले से बुकिंग्स ली होती हैं, हम लोगों ने भी बुकिंग दी होती थी, फिर हम सब गाड़ी में बैठ के वहाँ फैमिली के साथ जाते थे, फिर वहाँ बकरों को चूज़ करना होता है, ये बकरा वो, फिर जो चूज़ करें आप बकरा ले, देखिए कुर्बानी कर लें जितना गोश्त आपने रखना
है
जी जी। हमारे वहाँ अमेरिका में तो हम सब भेजते घरों में, हमें भी आता है, हम भी भेजते थे और अच्छा लगता है। तो गरीब बहुत हैं इधर भी, बहुत सारे हैं, उफ बहुत गरीब हैं। आप देखें आधे से ज़्यादा लोग तो यहाँ जॉबलेस हैं, अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे, लोगों के पास खाना नहीं है रियली रियली। हमारे पास पूछे लोग आते हैं ना जब ज़ाहिर स्कूल्स हैं तो ऐसे हैं जिनकी मजबूरी है।
अक्सर मैंने अभी टू फ्यू क्लासेस आई दिस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उनको उनकी
ऐसी बात नहीं है, देखिए अल्लाह खिलाता है ना उनको, हम क्यों ना खिलाएं।
I mean, I remember one time, my own sister-in-law, and I was living next door to Sikh lord there, and we were very close. I used to live with him. So मैं उनको उनको खाना बनाना भेज देना ये करना उनको, उन्होंने भी भेजना, तो मेरी भाभी कहती है कि it's not eat their food, और अपना उसको भेजो, उनको तो सलाम भी नहीं, हेलो भी नहीं कहना चाहिए। So this is not right, human rights में तो नॉन मुस्लिम और सारे मुस्लिम आते हैं। तो मेरी और भाभी की बहस हो गई थी, you know, and I said, no, this is not right. तो फिर इन बातों से जरा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ।
नहीं जी, आइडिया मेरा आपका नहीं है, अल्लाह के नबी ने हर चीज़ क्लियर कर दी। देखिए इवन ज़कात के पैसे उनको दिए जा सकते हैं जो न्यूली कन्वर्टेड हैं या अभी क्लोज टू कन्वर्टेड, ली मौल्लफतिल कुलूब टू सॉफ्टन देयर हार्ट्स। मुसलमान किसी से भी मिलें, हमसाए से मिलें, बच्चों के दोस्तों के माँ बाप से मिलें, नीयत ये रखें कि हमने इनको इस्लाम के करीब लाना है और इनकी आड़ में हमने कोई गलत चीज़ नहीं खानी। जज़ाकल्लाह। जैसे अब जहाँ मैं रहती हूँ अभी भी, तो हमारे सेम घर है तो उसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट एक के सिवा बाकी सब कोई हिंदू कोई इस तरह। हम सिर्फ इस सोच के साथ जो चीज़ उसको जिसको अच्छी लगती है उसको वो देते हैं कि हमारे और उनके बीच में ब्रिजेस बने, बैरियर ना बने।
तो ये यहाँ तक सुना कि जो अहले किताब है उनके साथ यू कैन गिव चैरिटी और मिलना मिलाना, लेकिन दूसरों के साथ नहीं।
देखिए आजकल के जो अहले किताब है ना वो भी एथियस्ट है, वो भी हजरत ईसा को वो नहीं मानते जो वो थे
जी,
तो फिर हम क्या कहेंगे। हर एक को जिससे मिले, मुसलमान की प्रायोरिटी क्या होती है कि वो लोगों को अल्लाह के करीब
ले। दाव शेयर माय कंफ्यूजन के क्लियर हो गए कि कैसे
दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, एक है उनके घर का ना खाना
जी जी,
एक है कि उनको अपनी फूड देना
जी जी,
उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट नेबर्स के जो हुकूक बताए गए हैं
वही रहते हैं,
करिश्त नेबर्स को भी इनवाइट करते
हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम डिटेल से कुरान पढ़ते हैं तो ये टॉपिक मोर देन 3 टाइम्स कुरान में आता है डिटेल से, कि क्या लिमिटेशंस हैं इसके, 5 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। ये एक पूरा इस्लाम का हिस्सा है, अलबरा वलवला कहते हैं इसको, कि किस से मोहब्बत की जा सकती है और किस से बेनियाज है, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम मुसलमानों को ये पता ही नहीं कि लिमिटेशंस, एक तरफ तो इतना घुल जाते हैं कि हम उनकी भी गलत चीज़ें ले आते हैं और दूसरी तरफ उनसे इतने रूड हो जाते हैं कि वो हमें देख के कहते हैं मुसलमान अच्छे ही नहीं होते ना। तो इसको बेहतर है कि कुरान की तफसीर के साथ सुना जाए ताकि आप इसको और अच्छी तरह से अप्लाई कर सकें। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को हम बेहतरीन तरीके से इन दिनों को यूज़ करें, जो इन्फॉर्मेशन मिली है इसको शेयर करें साथियों से भी जी। प्लीज़ ज़रूर,
आपने बोला अगर 4 रकअत पढ़ी है नमाज तो 4 सूरतें पढ़नी है, क्या वो 4 सूरतें जो है तरतीब से होनी चाहिए जैसे कुरान में है या आगे पीछे?
ऐसी कोई बात नहीं है, एनी टाइम एनी कोई पहली बाद वाली आखिर वाली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि इवन आपने सूरह बकरा पढ़ी फिर सूरह निसा पढ़ी और सूरह निसा के बाद आपने फिर सूरह अल इमरान शुरू कर दी।
अच्छा।
ایک ہی نماز میں نہیں ترتیب, کیونکہ ترتیب میں ہر ایک کو کہاں یاد ہوگی, اور یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو ہمارے کلچر میں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.